ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। आगामी आर्थिक वर्ष के बजट पर कल से संघीय संसद के दोनों सदनों में होगा विमर्श। बजट के ऊपर सघन विमर्श के बाद इसे पारित किया जाना चाहिए, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली का कथन। दूध उत्पादक किसानों की बकाया रकम का भुगतान जल्द ही करने की कृषि मंत्री ज्वाला कुमारी शाह ने जताई प्रतिबद्धता। सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए लंबे समय तक बारी का इंतजार करने की बाध्यात्मक स्थिति को हटाने संबंधी अध्ययन के लिए सरकार ने गठित की स्तरीय समिति। और अफगानिस्तान के पूर्वी नगरहार प्रांत में हुए नाव हादसे में 20 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 के बजट पर कल से संघीय सदन के दोनों सदनों में विचार विमर्श शुरू होगा। अर्थमंत्री वर्षमान पुन ने जेठ 15 गते को संघीय संसद की संयुक्त बैठक में 18,60,30,00,00,000 रुपए बराबर का बजट प्रस्तुत किया था, जिसमें चालू खर्च के लिए 11,40,66,00,00,000, विकास के लिए 3,52,35,00,00,000 और वित्तीय प्रबंधन के लिए 3,67,18,00,00,000 रुपए का बजट आवंटित किया गया था। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने कहा कि आगामी आर्थिक वर्ष के बजट में कुछ कमी कमजोरी हो तो उन पर व्यापक विमर्श करके इसे पारित किया जाना चाहिए। आज संसद भवन नया बानेश्वर में हुई एमाले संघीय संसदीय दल की बैठक में उन्होंने कहा कि बजट पर सघन विमर्श के बाद इसे पारित किया जाना चाहिए। बैठक में एमाले उपाध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमंत्री सुरेन्द्र पांडेय ने बजट के सबल और दुर्बल पक्षों की समीक्षा की थी। सरकार ने सरकारी अस्पतालों में इलाज और शल्य क्रिया के लिए लंबे समय बारी का इंतजार करने की बाध्यात्मक स्थिति को हटाने संबंध में अध्ययन कर रिपोर्ट पेश करने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठन की है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने कल के मंत्रिस्तरीय निर्णय के मुताबिक अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव डॉ दीपेन्द्र रमन सिंह संयोजकत्व में 3 सदस्यों की समिति गठित की है। समिति में गुणवत्ता मापन तथा नियमन महाशाखा के प्रमुख मदन कुमार उपाध्याय सदस्य और वरिष्ठ जनसंख्या प्रशासक डॉ गुणनिधि शर्मा सदस्य सचिव है। ये जानकारी मंत्रालय ने दी। कृषि तथा पशुपंछी मंत्री ज्वाला कुमारी शाह ने कहा कि दूध उत्पादक किसानों को जल्द ही बकाया रकम भुगतान की जाएगी। विश्व दूध दिवस के अवसर पर आज झापा के मेचीनगर में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री शाह ने ये बात कही। ये बताते हुए कि देश में दूध का उत्पादन बढ़ा है, उन्होंने कहा कि दूध के निर्यात के लिए जरूरी पहलकदमी हो रही है। महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री भगवती चौधरी ने कहा कि सरकार बेटे बेटियों की कमाई की 10% रकम माता पिता को दिलवाने की नीति लाने की तैयारी में है। आज भक्तपुर में एक कार्यक्रम के दौरान मंत्री चौधरी ने कहा कि ज्येष्ठ नागरिक आईन ज्येष्ठ नागरिक नियमावली के पारित होने के साथ ही ये नीति क्रियान्वित होगी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ज्येष्ठ नागरिकों के अनुभवों को साझा करने के स्थल के रूप में विकास करने के लिए सभी पालिकाओं में ज्येष्ठ नागरिक दीवा केंद्र और ज्येष्ठ नागरिक मिलन केंद्र स्थापित करने की तैयारी मंत्रालय ने की है। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री डोल प्रसाद अर्याल ने कहा कि श्रमाधान रोजगार मेला श्रम क्षेत्र के समस्या समाधान के उपाय के रूप में शुरू किया गया है। आज जनकपुर धाम स्थित उद्योग वाणिज्य संघ में आयोजित मेला के उद्घाटन के दौरान मंत्री अर्याल ने बेरोजगार युवाओं को रोजगारी की व्यवस्था करने के लिए स्थानीय उद्योगियों को आग्रह किया। मंत्री अर्याल ने रोजगारी के खोज में मध्य से अधिक जनसंख्या में युवा पुस्ता को विदेश जाने का क्रम नहीं रुकने पर चिंता व्यक्त करते हुए कृषि कर्म में लगने का उन लोगों से आग्रह किया। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं अब कुछ देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G भिडियो कल गर्दा नो 4G नेपाल टेलिकम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नोजी नेपाल टेलिकमको 4G आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकमको 4G नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने कहा कि विविधता के बीच एकता देश की पहचान है। नेवा पत्रकार राष्ट्रीय दबू द्वारा आज ललितपुर में आयोजित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पत्रकारिता सम्मेलन में पूर्व राष्ट्रपति भंडारी ने कहा कि बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक और विविधता युक्त समाज में मातृभाषा पत्रकारिता का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। लुम्बिनी, कर्णाली और सुदूर पश्चिम प्रदेशों में आपदा की पूर्व तैयारी और प्रतिकार्य के लिए साझा कार्य योजना का निर्माण किया गया है। शहरी विपत तथा पूर्व तैयारी परियोजना सुपर के सहकार्य में लुम्बिनी, कर्णाली और सुदूर पश्चिम प्रदेशों के आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय द्वारा नेपालगंज में आयोजित 3 दिनों के विचार विमर्श के व्यवस्थापन में पूर्व तैयारी, जोखिम न्यूनीकरण और सूचना व्यवस्थापन के लिए कार्य योजना तैयार किया है। मुगू में यारसा गुम्बा चुनने के लिए गए 2 लोगों की हाई अल्टीट्यूड के कारण मौत हो गई। हाई अल्टीट्यूड के कारण गंभीर हो चुके छायानाथ रारा नगर पालिका वार्ड नंबर 12 शोभा गांव पालिका के 29 वर्षीय मान बहादुर बुढ़ा और कंपा गांव के शोभान बुढ़ा की हुई मौत की जानकारी पुलिस ने दी। इसी तरह दारचूला में यारसा गुम्बा चुनने के लिए गए अपी हिमाल गांव पालिका 3 राता भिट्टा के 24 वर्षीय मिलन कार्की की पहाड़ से गिरकर मौत हो गई, ये जानकारी पुलिस ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अफगानिस्तान के पूर्वी प्रांत नांगहार में नाव पलटने से दर्दनाक हादसा हो गया। यहां नदी में एक नाव पलट गई जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक नांगहार प्रांत के सूचना विभाग के प्रमुख कुरैशी बडलून ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, महिलाओं और बच्चों से भरी एक नाव सुबह 7 बजे मोहम्मद द्वारा जिले के बशावुल क्षेत्र की नदी में डूब गई। वहीं खामा प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 5 शव बरामद किए गए हैं और बाकियों की तलाश जारी है। साथ ही 5 लोगों को डूबने से बचा लिया गया है। हादसे के कारण की जांच की जा रही है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.2 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आगामी आर्थिक वर्ष के बजट पर कल से संघीय संसद के दोनों सदनों में होगा विमर्श। बजट के ऊपर सघन विमर्श के बाद इसे पारित किया जाना चाहिए, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली का कथन। दूध उत्पादक किसानों की बकाया रकम का भुगतान जल्द ही करने की कृषि मंत्री ज्वाला कुमारी शाह ने जताई प्रतिबद्धता। सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए लंबे समय तक बारी का इंतजार करने की बाध्यात्मक स्थिति को हटाने संबंधी अध्ययन के लिए सरकार ने गठित की उच्च स्तरीय समिति। और अफगानिस्तान के पूर्वी नंगरहार प्रांत में हुए नाव हादसे में 20 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।